अच्छा, नेक्स्ट जो है ना, हमारे पास मियो टॉरेस सिंड्रोम है। ये भी एक इनहेरिटेड ऑटोसोम डोमिनेंट एक सिंड्रोम है फैमिलियल, विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ ट्राइड, जिसके अंदर हमारे पास जो है ना सेबिशियस न्योप्लाजम्स हैं, जिसके अंदर ये सेबिशियस एपिथिलियोमा भी हो सकता है, सेबिशियस एडिनोमा भी हो सकता है, और सेबिशियस कार्सिनोमा भी हो सकता है। इसके अलावा इसमें केराटोकेनोमास हैं मल्टीपल, और इंटरनल मैलिग्नेंसीज हैं। फिर इंटरनल मैलिग्नेंसीज में काफ़ी हैं, जिसमें मोस्ट कॉमनली जो कोलोन कैंसर है, उसके अलावा एंडोमेट्रियल कैंसर, कैंसर्स ऑफ द ड्यूटिनम या स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्रेस्ट, लिवर, किडनी, और सिंगल केस में जो है ना लंग का स्मॉल सेल कार्सिनोमा भी देखा गया है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होंगी। एक ऑटोसोमल डोमिनेंट फैमिलियल सिंड्रोम है, जो ऑनसेट ऑफ द लीजन्स है या ऑनसेट ऑफ मेलेगनेंसी है, वो किसी भी एज में हो सकता है। सेकेंड डिकेट से भी देखा गया है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो है ना वो फिफ्थ डिकेट है। इसमें कोई भी जेनेटिक वो नहीं है, इक्वली देखा गया है इन द मेल एंड द फीमेल, और वाइट पॉपुलेशन में ज़्यादा है। जेनेटिक में जो है ना इसकी म्यूटेशन होती है, जो मोस्ट कॉमन म्यूटेशन है ना वो MSH2 जीन है, लेस देन, ये जो कि 90% केसेस में है। लेस देन 10% केसेस के अंदर MLH1 जीन है, और उसके अलावा रेयरली जो है ना वो MSH6 और PMS2 जीन्स हैं। ठीक है, जो MSH2 जर्म लाइन म्यूटेशंस है ना वो शो करती हैं हायर इंसिडेंस ऑफ एक्स्ट्रा कोलोनिक मेलेगनेंसीज, जैसे कि एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। हिस्ट्री में ये होता है कि इसके अंदर फैमिली हिस्ट्री मिलती है ऑफ द मल्टीपल ट्यूमर्स और इंटरनल मैलिग्नेंसी, और इसमें जो है ना वो मल्टीपल सेबिशियस ट्यूमर्स मिलेंगे और इंटरनल मैलिग्नेंसीज, कोलोरेक्टल कैंसर्स वगैरह, जो ट्राइड मैंने बताया था ना वही है। उसके अलावा जो जो पेशेंट्स जो है ना इम्यूनो सप्रेशन रिसीव कर रहे होते हैं फॉर एनी रीज़न ना, उनमें जो है रिस्क ऑफ ट्यूमर्स इंक्रीज़ हो जाता है। तो फिर ऐसे पेशेंट्स में जो है ना, अगर इम्यूनो सप्रेस ड्रग्स के अंदर वो टैक्रोलिमस ले रहे होते हैं, तो फिर हम उसको चेंज कर देते हैं टू साइटोलिमस। अच्छा, फिर उसके अंदर से काफ़ी परसेंटेजेस लिखी हुई हैं कि इतने इतने परसेंट में क्यूटीनियस ट्यूमर्स होंगे पहले, फिर इंटरनल मैग्नेसिस। आई डोंट थिंक ये सारा कुछ हमें याद करना है, हमें ये भी याद रख लेना कि इसमें ये ट्यूमर्स होते हैं अभी काफ़ी हैं। ठीक है, अब उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली ये है कि इसमें सेबिशियस नियोप्लाजम या इंटरनल मैलिग्नेंसी जो है ना वो इतनी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते एज सच, अगर वो एलोन प्रेजेंट हों तो। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमारे पास टर्कट सिंड्रोम है, फैमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस है, और गार्डनर सिंड्रोम है। इन सब में जो है ना वो क्या कहते हैं कि सेबिशियस नियोप्लाजम्स हैं, और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा दूसरे इंटरनल मैलिग्नेंसीज भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो टर्कट सिंड्रोम है ना उसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर है हमारे पास कोलोन कार्सिनोमा, सेबिशियस कार्सिनोमा, और एस्ट्रोसाइटोमा, और इनके जीन्स भी सिमिलर हैं। दोनों में जो है ना MLH1 है और PMS2 जीन है, लेकिन जो टर्कट सिंड्रोम है ना उसके अंदर जो ब्रेन ट्यूमर्स का जो परसेंटेज है ना वो थोड़ा ज़्यादा है। उसके अलावा हमारे पास फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस है, जिसके अंदर कोलोन कैंसर्स और मल्टीपल कोलोनिक पॉलिप्स होते हैं। उसके अलावा इसमें हेबेटोब्लास्टोमा, थायरॉइड, एड्रीनल, पैनक्रियाटिक, बाइल डक्ट ट्यूमर्स होते हैं, ऑस्टियोमास, अनइरप्टेड और एक्स्ट्रा टीथ, कंजेनिटल हाइपरट्रॉफी ऑफ द रेटिनल पिगमेंट एपिथीलियम, डेस्मॉइड ट्यूमर्स और बेनाइन स्किन लीजन्स लाइक एपिडर्मॉइड सिस्ट और फाइब्रोमास हो सकते हैं। ठीक है, गार्डनर सिंड्रोम भी एक सब टाइप ही है फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस का, जिसमें हाई रिस्क कोलोन कार्सिनोमा और मल्टीपल कोलोन पॉलिप्स होते हैं। इसके अलावा सेबिशियस सिस्ट, एपिडर्मॉइड सिस्ट, फाइब्रोमास, डेस्मॉइड ट्यूमर्स, ऑस्टियोमास होते हैं, जो कि मियोटोरी का फीचर नहीं है। फिर उसके बाद इसमें कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो जो इंटरनल मैग्नेंसी के कॉम्प्लिकेशन होते हैं वही से कॉम्प्लिकेशन हैं, लेकिन प्रोग्नोसिस जनरली गुड, क्योंकि मैंने बताया ना कि जो भी नियोप्लाज्म है वो इतनी एग्रेसिव नहीं है एज सच इफ दे आर प्रेजेंट अलोन। बस इसमें हमने ये करना होता है कि जेनेटिक स्क्रीनिंग करनी होती है, फैमिलीज़ की काउंसलिंग करनी होती है, और जेनेटिक टेस्टिंग करना होता है फॉर द जीन म्यूटेशंस। उसमें फैमिलीज़ को मल्टी डिसिप्लिनरी केयर देनी होती है, जो भी नियोप्लाज्म होगा उसके अपने स्पेशलिस्ट के पास हम उसको भेजेंगे फॉर द मैनेजमेंट, और फिर स्क्रीनिंग करते जाएंगे। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी उसमें जो है ना स्क्रीनिंग की फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल 50 ऑनवर्ड्स एज है ना, तो उससे पहले हम 3 ईयरली अगर फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, तो फिर उसके बाद 1 to 2 ईयरली हम फॉलोअप के लिए बुलाएंगे, और फिर जो भी मैलिग्नेंसी होगा उसके मुताबिक उसकी इन्वेस्टिगेशन कर देंगे। जैसे अगर एंडोमेट्रियल कैंसर है तो एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे, सर्वाइकल स्मेयर करेंगे, पैप स्मेयर और चेस्ट एक्सरे वगैरह, ये सारी इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अगर क्यूटीनियस जो है हमारे पास सिंगल मैलिग्नेंसी है तो फिर उसमें, या कोई सिंगल लीजन है तो उसमें सर्जिकल सर्जरी और ये क्यूरेटिव कॉटरी भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर मल्टीपल स्किन लीजन्स है तो उसमें माइसो ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं।